आज शिवांशा को यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाना था। शिवांशा बाहर अच्छे से बिना किसी डर के कंफर्टेबल होकर जा सके, ये सोचकर वेद ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। हालांकि शिवांशा के कहने पर वेद ने प्रतीक को उसके साथ भेज दिया था। वेद ने प्रतीक को भी यही समझाया था कि वो सारा काम शिवांशा को खुद ही करने दे और दूर से उस पर नज़र रखे। प्रतीक को भेजने के बाद वेद खुद अपनी साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सृष्टि से मिलने के लिए आया था। शुरुआत में शिवांशा जिस तरह सपनों में डर जाती थी, ये देखते हुए वेद शिवांशा को भी सृष्टि के पास लेकर गया था, लेकिन अपनी डर के कारण शिवांशा उससे खुलकर कुछ नहीं बता पाई थी। आज फिर वेद सृष्टि से शिवांशा के सिलसिले में ही मिलने के लिए आया था। उसने पहले ही अपॉइंटमेंट ले ली थी, इस वजह से सृष्टि उसके लिए पूरी तरह फ्री बैठी थी। जैसे ही वेद सृष्टि के केबिन में पहुंचा, उसने मुस्कुराकर कहा, वेलकम मिस्टर चौहान, मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं बल्कि फ्रेंड बनकर मिलने आया हूँ। मुझे शिवांशा के बारे में बात करनी है, वेद ने सीधे सीधे कहा और सृष्टि के सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया था। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे। सृष्टि ने उसकी बात पर हामी भरी। वो बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी वाइफ का केस थोड़ा क्रिटिकल है। वो अपने बारे में ठीक से कुछ नहीं बता रही थी। ट्रीटमेंट की शुरुआत ही यहीं से होती है कि पेशेंट अपने बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई थी। तुम तो उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे ना, फिर तुम उसे दोबारा यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? सृष्टि के चेहरे पर हल्की हैरानी के भाव उभर आए थे। उसने मना कर दिया था, वेद ने जवाब दिया। मुझे लगा ही था, सृष्टि ने झट से कहा। शिवांशा से एक ही मुलाकात में वो समझ गई थी कि उसका ट्रीटमेंट करना और खुलकर उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना आसान नहीं रहने वाला है। वेद अचानक आज शिवांशा के बारे में सृष्टि से डिस्कशन करने के लिए आया था, तो जाहिर सी बात थी कि ये यूं ही नहीं था। क्या उसे अभी भी बुरे सपने परेशान करते हैं? बहुत टाइम हो गया तुम दोनों की शादी को, अब तक तो उसे तुमसे खुल जाना चाहिए, सृष्टि ने उत्सुक निगाहों से वेद की तरफ देखकर पूछा। नहीं, उसे वो सपने परेशान नहीं करते हैं। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया, अब वो उतना डरी हुई नहीं रहती, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कभी कभी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, वेद ने बताया। तब तो तुम्हारे रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो? सृष्टि ने वेद के चेहरे की तरफ देखकर पूछा, जो इस वक्त बेहद परेशान लग रहा था लेकिन कुछ कहने से हिचकिचा रहा था। वेद ने गहरी सांस ली और कुछ पल रुक कर कहा, आई होप कि हमारी बातें हमारे बीच ही रहें। ये भी कोई कहने की बात है, किसी को नहीं पता कि तुम खुद मेरे पेशेंट रहे हो और मेरे पास काफ़ी लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ मैं उनके सेशंस रिकॉर्ड तक नहीं करती हूँ, सृष्टि ने उसे आश्वासन दिया। वेद के लिए शिवांशा की ज़िंदगी से जुड़े हुए राज किसी तीसरे शख्स के सामने रखना आसान नहीं था, पर साथ ही उसे सृष्टि पर पूरा भरोसा था। शी वॉज़ अ रेप विक्टिम, वेद ने धीमी आवाज़ में कहा। ये सुनकर सृष्टि को झटका सा लगा। उसने भारी आवाज़ में कहा, जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, मुझे यही लगा था कि ज़रूर उसके साथ बचपन में असॉल्ट हुआ होगा, उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल रहा होगा। उसे याद नहीं है और मुझे डर है कि अगर मैं उसके करीब गया तो उसे सब याद आ जाएगा, वेद ने गहरी सांस लेकर कहा। ऐसा नहीं था कि वेद शिवांशा की इच्छाओं को जानबूझकर अनसुना कर रहा था, लेकिन वो अपने डर को भी अनदेखा नहीं कर सकता था। जब पहली बार वेद और शिवांशा के बीच में किस हुआ था, तब उस समय भी शिवांशा के दिमाग में पुरानी यादें ना चाहते हुए भी ताज़ा हो गई थीं। हालांकि वेद ने तब इसे बहुत अच्छे से संभाल लिया था और शिवांशा को भी समझाया था, पर एक नॉर्मल सी करीबी पर उसके दिमाग पर ऐसा असर हुआ था तो वेद को डर था कि जिस दिन वो उसके पास आया तब शिवांशा के दिमाग में वो सारी यादें ताज़ा ना हो जाएं। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अगर उसे याद नहीं है तो ये भी किसी ट्रॉमा के चलते ही हुआ होगा। बुरी यादें तभी ताज़ा होती हैं जब कुछ बुरा हो रहा हो, सृष्टि ने उसे समझाया। पहले मुझे भी यही लगता था, पर वेद बोलते हुए एक पल के लिए रुका और उसने मायूस आवाज़ में आगे कहा, पर ऐसा नहीं है, मैंने आगे बढ़ने की सोची थी, हम पास भी आए थे और सिर्फ थोड़ी सी करीबी में उसे ये लगने लगा कि ये सब उसके साथ पहले भी हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वो जो जख्मों को भूल गई है वो फिर से ताज़ा हों। लेकिन इस चक्कर में तुम अपनी लाइफ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। हो सकता है ये सब तुम्हारे मन का वहम हो। तुमने बताया कि सिर्फ एक ही बार उसे ये सब याद आया था। धीरे धीरे शुरुआत करो, उसे कंफर्टेबल करो, उसके बाद उसका दिमाग उन बुरी यादों को पूरी तरह भुला देगा। तुम चाहो तो उसे यहाँ सेशंस के लिए ला सकते हो, सृष्टि ने उसे सुझाव दिया। वेद ने मना करते हुए तुरंत नामे सिर हिला दिया था। वो बोला, नहीं, मैं गलती से भी उसकी पुरानी यादों को वापस लौटने नहीं दे सकता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे हमेशा उससे दूरी बनाकर ही क्यों ना रखनी पड़े। तब मैं उसे यहाँ लेकर आया था क्योंकि मैं उसके बुरे सपने और उसके डर का कारण जानना चाहता था। वेद के डर को सृष्टि समझ सकती थी, उसने ज्यादा फोर्स भी नहीं किया। वेद की कशकमश को दूर करने के लिए सृष्टि ने फिलहाल उसे यही सलाह दी थी कि वो शिवांशा के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत धीरे धीरे करे। सृष्टि को थैंक्स बोलकर वेद वहां से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रतीक और शिवांशा यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। दोपहर का समय होने की वजह से शिवांशा को बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ा। ज्यादातर स्टूडेंट्स कैंटीन एरिया में थे और वो बिना लाइन में लगे अपना फॉर्म सबमिट करके वापस गाड़ी में लौट चुकी थी। शिवांशा के चेहरे पर राहत के भाव थे क्योंकि उसे भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा। प्रतीक ने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा और सब समझते हुए बोला, आपको पता है ना, आपको यहाँ रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के लिए आना होगा। आपको सबसे घुलना मिलना सीखना चाहिए। आप बिल्कुल अपने भाई की तरह बात कर रहे हो। क्या ये सब करना ज़रूरी है? मुझे समझ नहीं आता वो मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं। मैं उनके साथ बस एक सिंपल सी लाइफ बिताना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं सबका सपना डॉक्टर इंजीनियर बनने का हो, शिवांशा ने जवाब में कहा, जिसे सुनकर प्रतीक हल्का सा हंस पड़ा था। आप तो उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गई हैं। सोचिए अगर कल को वो आपकी लाइफ में नहीं रहे तो आप क्या करेंगी? प्रतीक ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। शिवांशा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, उल्टा उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव उभर आए थे। अब तो वो अपनी ज़िंदगी की वेद के बिना कल्पना तक नहीं कर सकती थी। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब वो मेरी लाइफ में नहीं रहेंगे, शिवांशा ने कांपती आवाज़ में कहा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैंने ये नहीं कहा कि वो आपकी लाइफ में नहीं रहने वाले हैं। शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई। वो बस आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं ताकि आप किसी पर निर्भर ना रहें। डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना ना होगा, लेकिन अपने हस्बैंड की उनके ऑफिस में आप हेल्प कर सकती हैं। प्रतीक ने इतना ही कहा और फिर चुप हो गया था। शिवांशा के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे उसकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद प्रतीक ने शिवांशा को चौहान पैलेस छोड़ा और फिर खुद ऑफिस लौट आया था। आज पहली बार उसने थोड़ी सी सही लेकिन शिवांशा से खुलकर बात की थी। चौहान अंपायर्स पहुंचते ही प्रतीक सीधा वेद के केबिन में गया। उसे देखते ही वेद ने तुरंत पूछा, सब अच्छे से हो गया? प्रतीक ने जवाब में हल्के से हाँ में सिर हिला दिया था। परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ यूनिवर्सिटी में? वेद ने उसके चेहरे को देखकर सब समझ लिया था।
वो आप पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गई है। ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी बस आपके ही आसपास घूमती है। आपके अलावा ना तो वो कोई दूसरी चीज के बारे में जानना चाहती है और ना ही समझना चाहती है। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, प्रतीक ने उलझन भरे स्वर में कहा। ये सब सिर्फ प्रतीक ने नहीं, वेद ने भी नोटिस किया था। वेद ने भौहें चढ़ाकर कहा, यही वजह है कि मैं उसे फोर्स कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, उसे मैं संभाल लूंगा। मुझे पता है उसे कैसे बाकी चीज़ों के साथ कंफर्टेबल करना है। प्रतीक ने उसकी बात पर हामी भरी। आगे बोलने से पहले उसने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, तेज का कॉल आया था। उसने बताया कि आज उसे डॉक्टर को बुलाना पड़ा क्योंकि अंकुश की हालत खराब है। ठीक है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ। इतने दिनों का ड्रामा काफी होगा उसे उम्र भर परेशान करने के लिए, वेद ने जवाब दिया। उसके बाद क्या करना है? प्रतीक ने आगे पूछा। फिलहाल उसे पूरी तरह ठीक होने दो। मुझे अच्छे से पता है राजावत फैमिली नव्यांशी और अरमान की शादी जल्द से जल्द करवाने के पीछे क्यों पड़ी हुई है। उन्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं। अंकुश राजावत फैमिली में जाएगा जरूर, लेकिन कब और किस हालत में ये मुझ पर डिपेंड करता है, वेद ने सस्पिशियस वॉइस में कहा। उसने अंकुश के लिए पहले से ही काफी कुछ प्लान कर रखा था। प्रतीक वेद से कुछ जरूरी बात करके वहां से जा चुका था। हालांकि वेद ने प्रतीक के सामने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन आज सृष्टि से हुई बातें और शिवांशा का बर्ताव उसे दिन ब दिन चिंता में डाल रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे इस बात से प्रॉब्लम थी कि शिवांशा उस पर डिपेंडेंट होती जा रही थी। उसकी वजह भी वो कहीं ना कहीं समझता था। बस वो यही चाहता था कि शिवांशा अपनी इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकले। दूसरी तरफ शिवांशा शाम को वेद के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हमेशा की तरह आराध्या और वंश समय पर आ गए थे, लेकिन वेद आज भी लेट आने वाला था। मजबूरन उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रात के 10 के करीब वेद घर पहुंचा। उसे अच्छे से याद था कि रानी का कॉल आया था और शिवांशा उसके कमरे में कुछ बदलाव करवाना चाहती थी। पता नहीं उसने क्या चेंज किया होगा। क्या मेरे रूम का इंटीरियर अच्छा नहीं? हो सकता है उसे विंटेज के बजाय आजकल की जनरेशन की तरह सब कुछ मॉडर्न और एस्थेटिक चाहिए होगा। आई होप उसने ज्यादा कुछ चेंज ना किया हो, क्योंकि मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाऊंगा और मेरे लिए चेंज एक्सेप्ट करना भी आसान नहीं। वेद खुद से बातें करते हुए ऊपर जा रहा था और साथ ही मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि शिवांशा उसके कमरे को पूरी तरह ना बदल दे। वहीं वेद का इंतजार करते हुए शिवांशा चहलकदमी करते हुए थक गई थी। अब उसे उस सोफे की कमी ज्यादा खल रही थी जो उसने आज ही हटवाया था। थकने पर अक्सर वो आराम से वहां बैठ सकती थी, लेकिन अब कोई और चेयर वगैरह नहीं होने की वजह से वो बेड का सहारा लेकर जमीन पर बैठी हुई थी और उसकी आंख लग गई थी। जैसे ही वेद ने कमरे में कदम रखा, उसने अपना सिर पकड़ लिया था। कमरे में से काउच गायब था। ऊपर से शिवांशा जमीन पर इस तरह बैठी हुई थी कि नींद में वो कभी भी दूसरी तरफ गिर सकती थी। वेद जल्दी से उसके पास गया और उसके सिर के दूसरी तरफ हाथ रख दिया था। बेवकूफ लड़की, सीधे सीधे भी तो बोल सकती थी, वेद ने बड़बड़ाकर कहा। सीधे सीधे ही कहा था, लेकिन आपको समझ कहाँ आया था? शिवांशा ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलकर वेद की तरफ देखकर कहा। सो कर ली तुमने अपनी जिद पूरी? वेद भौहें चढ़ाकर बोला। अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, शिवांशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और वेद के हाथ का सहारा लेकर खड़ी हो गई थी। उसके इस बचपने पर वेद कुछ नहीं कह पाया था। एक पल के लिए वेद का चेहरा देखकर शिवांशा को यही लगा कि सोफा हटाने की वजह से उसे डांट पड़ने वाली है, लेकिन वेद ने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। ये उसे हैरान कर रहा था। वेद के दिमाग में सृष्टि की बातें चल रही थी, जिसने उसे आज ही समझाया था कि उसे शिवांशा के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत कभी ना कभी तो करनी ही होगी, और ये वो धीरे धीरे करे तो ज्यादा सही रहेगा। जैसा कि आप चाहते थे कि इनका रोमांस दिखाई जाए, तो बस उसकी शुरुआत हो गई है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।